सौभाग्य। और हमारे पतियों को यदि गंध भी लग जाए तो वो लाठी ठेंगा उठाकर मारने के लिए दौड़ते हैं, घरों में बंद कर देते हैं, हम लोगों को कहां सौभाग्य। और देखो यही नहीं, दिव्यामिमान गतयो स्मरण अनुसारा, देवियां आकाश में अपने पतियों के सहित विमानों पर आ रही। यहां पर देवताओं के लिए नहीं कहा, देव्यो विमान गतय स्मरणनुसारा, देवियां कृष्ण को देख रही हैं और गोपियों के हृदय से अपनी दृष्टि से ये देख रही हैं कि देवियों ने देखा। क्यों देखा? ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमारे प्रभु ने यह बतलाया है कि देवताओं की पत्नियां अधिक भक्तिमान हैं। जैसे मथुरा के ब्राह्मणों से मथुरा की ब्राह्मणों की यज्ञ पत्नियां बहुत भगवान की अधिक भक्तिमान हैं, ऐसे देवताओं में भक्ति का गंध नहीं, उसमें केवल शंकर जी और ब्रह्मा जी और कुछ ऐसे हैं, बाकी लोगों को नहीं है। इसलिए उनको कहा जे जाओ उनकी जो प्रिया जी हैं राधिका जी की सेवा के लिए आप लोग ब्रज में गोपियों के कुल में गोपी होकर के जन्म ग्रहण करो, उनके लिए विशेष आज्ञा है। इसलिए वो दिव्यो विमान गतय कृष्ण के उस रास लीला को देख करके या कृष्ण का वह रूप और बांसी वादन देख करके वेणु वादन देख करके, वहां पर वेणु समझो बंसी मुरली का नाम कहीं उन 16 या 20 श्लोक है कहीं नहीं, 20 श्लोक बंसी वहां नहीं जाएगी, वेणु वादन कर रहे हैं, वेणु माने पुरुष, इसलिए उनको तो ईर्ष्या हुई। ये वेणु पुरुष होकर के भी हम लोगों की संपत्ति का हम लोगों को देख करके हमें फुत्कार से उड़ा करके और हम लोगों के सामने ही कृष्ण के अधर रस का ये पान कर रहा। देखो तो, अरे इनके वंश वाले जो बांस और वृक्ष इत्यादि हैं ये कह रहे हैं हमारे वंश में एक सुपुत्र हुआ। और रादनियां जो हैं, रादनी रादनी माने तालाब सरोवर जमुना, ये वो अपने पानी से सींचने से कह रहे हैं हमारे पानी से सींचा हुआ ये वंश में सुपुत्र जन्मा जो कृष्ण के आधार पर ये दिया है। और गोपियों को देख करके ईर्ष्या हो रही, वो हम लोगों के सामने ऐसा कर रहा है। इस वेणु गीत में कृष्ण के वेणु गीत को और कृष्ण के परम सौंदर्य मुखारविंद को दर्शन करके और साथ साथ में गोपियों को देख करके स्मरणानुसारा स्मर जागृत हुआ। स्मर माने अत्यंत अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम से अपने को संभाल नहीं सकी और झट पतियों के गोद में ही मूर्छित हुई। पतियों ने कृष्ण को देखा किंतु गोपियों को और इस प्रकार का रास और ये सब कुछ उनको देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। उनका सौभाग्य कहाँ से होगा, वो तो उस सब क्रियाओं में कामों में कर्मों में ये फंसे रहते हैं, भोगों में फंसे रहते हैं। इसलिए वहां पर दिव्या माने उनकी पत्नियों को समझो देवताओं की, इसी तरह से इन सब में ये सभी सब शिक्षा भरी पड़ी हैं। वर्षासुर का मरने का प्रसंग आया ना, वर्षासुर मरु दैत्य का पुत्र था, उसका नाम था प्रमिल दैत्य। वशिष्ठ के आश्रम में एक दिन गया और उद्धव तो था ही, नंदिनी गैया को जब चाहो तभी दूध मिल जाता है दे करके उसको हरण करने की इच्छा की। उसने देखा जैसे बल से अपने ले जा सकते हैं, फिर क्या किया, ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास में गया, वशिष्ठ जी के पास में, प्रभु हमको नंदिनी गाय दे दीजिए, हम यज्ञ करेंगे उसमें दूध की जो आवश्यकता पड़ेगी। वो कुछ देने का ही विचार कर रहे थे, इतने में नंदिनी ने कहा प्रभु इनको दे मत, हमको हम इसके यहां नहीं रहेंगी, ये दैत्य है, प्रमिल दैत्य है, ये वेश बना करके आया था। देखते ही वशिष्ठ जी को भी क्रोध आ गया, उन्होंने कहा जाओ तू बछड़ा, फिर ऐसा आप काम मत करना और तू दैत्य होगा। जब उनके चरणों में गिरने लगा तो उन्होंने कहा, अच्छा जा कृष्ण लीला में तू ये वत्स होकर के, वत्सासुर होकर के आएगा और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से, हाथों के स्पर्श से तुम्हारी सदगति हो जाएगी, इस तरह से तुम्हारी इससे मुक्ति हो जाएगी। इसी तरह से अघासुर शंखासुर का पुत्र था, वो अपने रूप में इथला रहा था, बड़ा सुंदर जवन और अत्यंत सुंदर उसके रूप। चार आदमी भगवान का भजन नहीं कर सकते, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मगर, इससे जिनका मद बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति या स्त्रियां नहीं भजन कर सकती। जैसे बतलाया ये जन्म उच्च कुल में जन्म लेना, विद्या का होना और धन का होना, और सबसे बड़ा गर्व है रूप का, थोड़ा सा रूप हो गया बस गर्व में मत हो गए। यदि धन का मद है तो बाकी सब मदों को वो खुद ला लेता है, और इसका कैसे विनाश होता है इसमें अघासुर का ये है। रूप मद में इठला करके चलता था, दुर्वासा ऋषि को देख करके वाह 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 क्या सुंदर क्या सुंदर चिढ़ाने लग गया। एक दो बार नहीं, जब बार बार ऐसा करने लगा कहा जैसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। संतों को क्रोध नहीं होता, क्रोध को तो जीत लेते हैं, किंतु जगत के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए ऐसा कभी कभी ऐसा भाव प्रकाश करते हैं जिससे कि मालूम होता है क्रोध, क्रोध नहीं वो दया का सूचक है। मैया अपने बच्चे को आग में वो हाथ दे रहा, किसी चीज को पकड़ रहा है जिसको पकड़ना नहीं चाहिए, मैया ने मना किया, मानता नहीं आता, एक थप्पड़ दे दिया, जहूं करने लगा तो गोदी में उठा लिया, ये मरना भी उसकी कृपा है। इसलिए संतों का जो अभिसंपात है ये भी करुणा का सूचक है, इसलिए उन्होंने जाता दिया जा तू बुरी जोनी में चले जा, तुम अजगर होकर के जन्म, गंदी गंदी चीजों को खाएगा, दुर्गंध निकलेगा। फिर जब चरणों में गिर करके क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा जैसे जाओ, द्वापर के अंत में कृष्ण जी आविर्भूत होंगे, उनके दर्शन से स्पर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। बकासुर भी पूर्व जन्मे हयग्रीव नामक असुर का पुत्र था, उसका नाम उत्कल दैत्य था, बड़ा दुराचारी, मांस मछली अंडे गोश्त शराब इत्यादि का वो सेवन करता था, और वैसा ही उसका स्वभाव भी हो गया था, अत्यंत अत्याचारी। जो लोग प्याज लहसुन खाएंगे, अंडे खाएंगे, गोश्त खाएंगे, शराब पिएंगे, उनकी बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो जाएगी, वो किसी को आदर नहीं दे सकेंगे, अत्यंत हिंसा में लिप्त हो जाएंगे। तो ये उत्कल दैत्य जजाली ऋषि के आश्रम में गया, समुद्र के किसी नदी या समुद्र के किनारे, और वहाँ पर वो बंसी में रस्सी लगा करके और छोड़ देता पानी में, और मछलियाँ बच जाती, और मछलियों को ऐसे निकाल लेता, बड़ा आनंदित होता, मछलियाँ छटपटाती छटपटाती, और उनको लेकर के गरम गरम तेल में जीती जीती गोही छील छाल कर बंगाल में जैसे कर तेल में और उसे खाता। इनको देख करके बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उसे मना किया जजाली ऋषि ने, हमारे आश्रम में ऐसा मत करो, यहाँ से चले जाओ, किंतु जब माना नहीं तो अभिसंपात कर दिया, जाओ मछली खाने वाला तू बगला बन जा। तो वो बगला हो गया, तो फिर उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने से फिर उनको दया आ गई, उन्होंने कहा जाओ अभी बगला रहेगा, हजारों वर्षों तक लाखों वर्षों तक कृष्ण आएंगे तो उनके स्पर्श से तेरा कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें ये सब किसी न किसी रूप में कुछ शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, और लीलाओं के श्रवण करने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। अभी बहुत सी कथाएं अभी बाकी रह गई हैं, इसलिए संक्षेप में हमने बतलाया, अब आगे की कथा आरंभ। राधे रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि। इन सब चीज़ों से नहीं, वो द्वापर युग के लिए यदि गिरिराज गोवर्धन को प्रसन्न करना है तो कीर्तन रूपी यज्ञ के माध्यम से उनकी पूजा होगी। अभी हम लोग कीर्तन रूपी यज्ञ से हम गिरिराज गोवर्धन की हम लोग पूजा कर रहे हैं। बोलिए तो कीर्तन को सुन करके प्रसन्न भए और मुहांगा वरदान देने लग गए। उस समय गोप गोपों ने प्रसन्न होकर के बाल बच्चों को गाड़ियों में बिठा दिया, बूढ़े बूढ़ों माता पिता को भी छकड़े में बैठा दिए, खाते पिए फिरते मालपुआ हाथ में ले लिए, गान करते हुए नृत्य करते हुए और खाते पीते परिक्रमा करने लग गए। परिक्रमा पूरा की, इतने में इंद्र ने देखा ओ एक वाले का छोकड़ा हमारा इतना अपमान कराया, मैं उस भूत को चोर को मैं देख लूंगा। पाचा बालिश माने मूर्ख, इसको मैं देख लूंगा। कहां मेरी प्रतिवर्ष पूजा होती थी और इसने मेरी पूजा बंद करा कर इन मूर्ख ग्वालों को से गोवर्धन पर्वत की एक पत्थर की पूजा कराई, वो बिगड़ गया। उसने मूसलाधार वर्षा आरंभ की, 49 पवनों को उन्होंने आदेश दिया और मुसल के समान वर्षा होने लगी। ऐसी घनाघोर वर्षा हुई और उस समय कार्तिक का महीना कुछ ठंड भी था, आकाश मेघ से परिव्याप्त हो गया, ब्रज डूबने लगा, कोई स्थान नहीं, केवल पानी ही पानी, गाय बछड़े स्त्री पुरुष सब लोगों ने विचार किया ये इंद्र की ही करतूत है, इंद्र की पूजा हम लोगों ने नहीं की इसलिए ऐसा किया। कृष्ण के पास में गए, तुमने पूजा कराई अब क्या होगा? कृष्ण, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम लोग सब लोग यहीं पर आ जाओ, गिरिराज जी जब पूजा ग्रहण की है तुम लोगों को वर दिया है तो यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सचमुच में यदि इनकी पूजा की गई हो तो हमारे उंगली पर उठ करके खड़े हो जाए। बस गिरिराज एकदम पलक लगते ही किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा, बस कानी उंगली पर खड़े हो गए, 7 दिन तक रखा। कारण क्या था? इंद्र का गर्भ चूर करना नहीं था, ये तो बहाना था। क्या कारण था? गोपियों को पूर्व राग हुआ, कृष्ण से मिलना चाहती, घर में ले घर वाले मिलना नहीं देने चाहिए। गोवर्धन मल्ल दुर्मद अभिमन्यु इन लोगों को गोपियों को बंद करके रखे हैं, यदि गई टांग तोड़ देंगे, घर में बंद रखा जाएगा, जा नहीं सकते। कृष्ण को से रहा नहीं गया, गोपियों को निकाल करके निकट लाना चाहते हैं, इसलिए इंद्र के माध्यम से इंद्र को पकड़ करके जोग माया से लाए, वर्षा आरंभ की। अब देखा जैसे इन लोगों को लाना है अब उन्होंने जब पर्वत ऊपर चला गया, नीचे बहुत विराट गर्त, सुनते हैं 7 माइल गोवर्धन नीचे थे और ऊपर में भी 7 माइल, लंबाई में 14 माइल, चौड़ाई में मीलों। अब तो उनका थोड़ा सा स्वरूप रह गया है, अभी तो भगवान जीव है, उनको दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, मोहमांगी वरदान लेते हैं। यहाँ तक कि जो परिक्रमा करते हैं गिरिराज किसी न किसी वेश में उनके पीछे पीछे चलते हैं, यदि कुछ मांग दे तो मैं दे दूं, और यदि किसी ने प्रकट नहीं किया तो चिंतित हो जाते हैं मैं क्या करूं इसकी इच्छा को पूर्ण करूं, किसी न किसी रूप में वो जरूर पूर्ण कर देते हैं। अधिकांश लोग 99% से भी अधिक लोग पेड़ों में डालियां बांध देते हैं, समझ जा रहे ये तो अपना पति या पति चाहता है, जाओ हो जाए, कोई ईंट पर ईंट पत्थर पर पत्थर लगा करके 7 परस्पर 8 9 10 लगा देते, अरे ये तो राजभवन चाहता है, इंगित मात्र से समझ जाते हैं और उनको दे देते हैं, और दुखी होते हैं कि ये हमारे पास भी आकर के ठग से रहे, ये कृष्ण का प्रेम नहीं चाहते। आप लोग ऐसा मत ठगेंगे, बस कृष्ण प्रेम, राधा की दासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहते हैं। गिरिराज यदि प्रसन्न है विलंब भी हो कोई बात नहीं, किंतु मैं इसके अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं लेती, व्यक्त मत कीजिए, गोवर्धन पीछे पीछे दौड़ेंगे, ऐसे परम कृपालु ही ये कृष्ण के ही स्वरूप है, बल्कि जो कृष्ण नहीं दे सकते उसको भी दे देंगे, कृष्ण तो अपने जो शक्ति है वो देंगे। भक्तों में कुछ अधिक होती है, वो सेवा करना जानते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना जानते हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अधिक होता है, वो प्रेम मांगना चाहिए गिरिराज गोवर्धन से। सबसे प्रेमों में गोपियों का प्रेम सबसे निराला और सर्वोत्तम है, और उनमें भी अष्ट सखियों का, और उनमें भी चंद्रावली और राधिका का, और उसमें भी राधिका का सर्वोत्तम, इसलिए उनकी दासी के अतिरिक्त और कुछ मांगना नहीं। गिरिराज जी ने से उन लोगों ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, एक कृष्ण चिरजीवी हो, कृष्ण के ऊपर में बड़ी विपत्तियां आ रही हैं, कृष्ण का बाल भी बांका ना हो, कोई भी विपत्ति इसको कुछ न कर सके, हे गिरिराज गोवर्धन इसका कल्याण हो, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते हैं। गिरिराज जी ने गोवर्धन, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कैसे उठाया, एक तो दो हाथ होते हैं, दाहिने में नहीं उठाया, दाहिने में कृष्ण होते हैं, बाएं में राधिका जी, और बाएं में बाएं उन्होंने और अंगुली पर उठाया, मेरी शक्ति राधिका जी ये उठा रहे, कृष्ण नहीं उठा रहे, ये दिख रहा है। कृष्ण तो शक्तिमान है, किंतु शक्ति ना रहे तो शक्तिमान कैसे होंगे, इसलिए जो कुछ भी सृष्टि से आरंभ कर जो कुछ भी ब्रज में लीला इत्यादि करते हैं वो सब राधिका जी को समझो, कृष्ण तो इच्छा केवल करते हैं, आस्वादन करते हैं, जो कुछ कार्यों का पूर्ण जो कुछ करना होता है श्रीमती राधिका जी की, ऐसी राधिका जी की दासी के अतिरिक्त हम लोग क्या चाहेंगे। भागवत का फल यही है सुनने का, बस एक राधिका जी के दास, तवई वाष्मी तवई वाष्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाए राधे तं नयमामचार्य। कृष्ण ने कहा जैसे मैं तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न है, कुछ मांग लो, तो कहते हैं श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधे स्वप्रिया चरण किं करी। आप यदि प्रसन्न है हे रास रस, राधा जी के अत्यंत प्रिय हैं, लोलुप हैं, तो हमको बस यही एक कीजिए, अपनी प्रिया जी की चरण की किंकरी की किंकरी की अनुकिंकरी की चरण की दासी कर दे, बस ये सब गिरिराज दे सकते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं उनके कंधरे कंधरे में हुई। इस तरह से इन लोगों ने या इंद्र वर्षा करने लगे, ये बहाना था, तो राधा जी अपने हाथों पर अपने इशारे से शक्ति पर उनको वहां पर रख, ये सब इसके रहस्य है। कृष्ण गोपियों से पूर्वराग के बाद में मिलना चाहते हैं, इसलिए एक बहाना ढूंढ करके इंद्र को उनकी जोग माया ने उनके कान पकड़ करके ले आई और उनसे ये काम किया, लोग समझ न सके, वो लोग समझे वहां पर गोपियां खड़ी हैं, कृष्ण उसको धारण किए हुए हैं, कृष्ण भूल गए कि मैं धारण किया हूं, बस गोपियों के साथ बर्फ में देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उनको खुशी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि देखते हैं कि आज हमारी लड़कियां बहुएं हमारी पत्नियां आज तो विपत्ति में पड़ी हुई हैं, इसलिए उनके यहाँ पर छिपी हुई हैं, यहाँ पर अपनी रक्षा कर रही हैं। किंतु कृष्ण परम प्रेम में पक करके उन गोपियों का दर्शन किया बहुत निकट में, और उन्होंने अपनी आंखों से आरती उतारी कृष्ण ने, और कृष्ण ने आंखों से ही उनकी आरती को ग्रहण कर लिया। ये गोवर्धन धारण का और इंद्र का प्रकाश कृपा करने का ये समय। पीछे से इंद्र जब अनुतप्त हुए अपने अनुचरों को भेजा, अब ब्रज में कोई जीवित तो नहीं, सभी मर गए हैं, और गाय बछड़े सब समाप्त तो हो गए हैं, आकर के देखा तो वो तो सब उसमें भरे पड़े हैं, और सब निकल करके फिर अपने अपने घरों में चले गए, और सब पानी सूख गया, सब हवा चली, सब ठीक हो गया। अरे वो तो सब ठीक हो रहा है, इतने में उनको युवारी कहीं वो नंद जी का लाला कहीं वही पर ब्रह्म तो नहीं है, समस्त कारणों का कारण नहीं है, मैंने ये सब पूछा, वज्र गिराए गोवर्धन को मालूम हुआ, जो उनको खुद भी समझ रही थी, बस इतना ही तक हुआ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में सुरभि गाय को लेकर के आए, अकेले हिम्मत नहीं पड़ी, सुरभि उनकी कृष्ण की प्रिया है, इसलिए उनको लेकर के आगे करके आए, उनका वहां पर अभिषेक किया, स्तव स्तुति की और क्षमा मांग करके गए, किंतु हृदय से ग्लानी नहीं गई। तब वो नवदीप में जाकर के सुरभि कुंड में जाकर के फिर उन्होंने तपस्या की, और गौरचंद्र जी का दर्शन हुआ, गौरचंद्र की करुणा से उनके हृदय का ताप और ये अपराध सब दूर हुआ। ऐसी ये सब लीला है, आगे की लीला है आप लोग
धाम की
जितने ब्रज के बूढ़े ऋषि और सब लोग एकत्र हुए, बड़ी भारी नंद की बैठक हुई गोवर्धन के पास में। उपानंद जी ने कहा, अरे नंद तूने ये क्या कर दिया, तुम्हारे घर में जानते हो कौन जन्म लिया, ये कोई देवता भ्रष्ट होकर के आए हैं, अथवा भगवान का कोई अवतार है, अथवा शंकर जी आए हैं, कौन आया है इसका पता नहीं, किंतु कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये पूज्य है, अरे बचपन से उसकी लीलाओं को देख नहीं रहा है, अभी तो समझो कोई मनुष्य गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कानी उंगली पर रख सकता, खबरदार अपनी जूती मत उसे मंगाओ। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया जरा जूती लाना, तो आदेश देते हैं नंद बाबा किसको, ब्रह्मांड के रचयिताओं के भी मालिक है, उनको कहते हैं मेरी जूती लइयो, और वो जूती सिर पर रख करके थेई थेई नाचते हुए इस तरह से गोपियां कहती हैं, अरे तुम्हें छाछ दूंगी, और इतने से छाछ पर नित्य कराती हैं, और वो एक यहां पर हाथ रखकर एक कान पर रखकर और बड़े सुस्वर से ओ इत्यादि करते हुए कीर्तन करते हैं, उनको नचाती हैं। इस तरह से जसोदा मैया, अरे जसोदा को अपनी पत्नी को कह देना सावधानी से इस बच्चे की सेवा करें, पूजा आरती उतारें, कहीं उनका कान गर्म ना करें, वो कान गर्म करती है, उसके कमर को बांध करके ओखल में बांधती है, और सबसे बड़ी भयंकर बात है ये, कहती है जो चोर तू है, और गोपियों को कह देना तुम्हारे घर में जो आती है ना उसको कहती है लंपट कहती हैं, कोई धूर्त कहती हैं, कोई क्या कहती हैं, लाबार कहती हैं, ये तो कहना ठीक नहीं, सबको मना कर देना। नंद बाबा जी बोले जो हो सो हो, हमारे घर में जब पुत्र होकर के आए हैं तो हमारे पुत्री हैं, मैं इनको शासन करूंगा, जो सोदा जी इनकी कान भी पकड़ेंगी और इनको शासन भी करेंगे, ये चोरी करेगा और हम कहेंगे नहीं, मट्टी खाएगा तो हम उसे मानेंगे नहीं, मना नहीं कहेंगे, इसलिए हम तो इसको शासन करेंगे। आप लोगों की बुद्धि सठी आ गई है, ग्वालों की बुद्धि, गोपों की बुद्धि 80 वर्ष के बाद में उनको दूध का दांत आता है, माने अकल की, अकल का दांत आता है। तो आप लोगों को ये विचार करना चाहिए, जो थोड़े से माखन और मिश्री के लिए रोता है, जो थोड़े से दूध पिलाने के लिए मटकी को फोड़ देता है, दांत को कर्मण करता है, भूख लगने पर चोरी करता है और कहता है मैंने कहाँ चोरी की। यशोदा जी कहते हैं तू चोरी करता है दूसरों के घरों में, मैया मैंने नहीं माखन खाया, मैंने कब खाया, अरे भोर भयो गौवन के पीछे मधुमन मोही पठायो, मधुमन में हमको पठाया तूने, सवेरे सवेरे में ही, उस समय कौवे भी नहीं उठते और गैयों के पीछे पीछे में चला गया, कुछ खाया नहीं, और फिर वहां पर शाम जब हो गई तो गौओं के पीछे 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 शाम को आया, तो मैंने कब चोरी की, ओह मैया मालूम होता है तुमने अपने कोख से मुझे जाया नहीं, उत्पन्न नहीं किया, पराये का लड़का समझती है और इसलिए तू हमको ऐसा कहती है, ऐसा इल्जाम हमारे ऊपर में लगाती है। यशोदा जी के आंखों से आंसू गिर लेकर के उनको छाती से लगाया, नहीं नहीं बेटा तैने मक्खन नहीं खाया, सचमुच तेने मक्खन, यशोदा जी कहने देखा जैसे ये ऐसा समझ रहा है, छोटा सा बालक समझता है कि मैं पराये का लड़का हूं, इसके अंदर में मेरी बातें लग गई, नहीं नहीं बेटा तू मेरा बेटा है और तुमने मक्खन नहीं खाया। कृष्ण भी रोने लग गए, मैया मैंने ही माखन खायो पहले कह रहे थे मैया मैंने ही माखन खायो, अब क्या कहने लगे मैंने ही माखन खाया, बस बेटा और मैया में दोनों में अब सुलहनामा हो गया, अपने गोदी में ले लिए संभाल लिए और दूध हूं। कहते हैं उपनंद जी ऐसा मत करो सावधानी से रोज की पूजा पाठ करो नहीं तो अपराध हो जाए इनके चरणों में। नंद बाबा कहते हैं कि बुद्धि 80 के बरस के बाद में उगती है, सबालग होते हैं, इसलिए आप लोग समझते हैं बतलाओ तो ये रोता है, कभी गिड़गिड़ाता है, कभी चोरी करता है, पेट में भूख लगने से ये रोता भी है, कहता है अरे बलदेव की मोटी मोटी चोटी हो गई और मेरी छोटी मोटी नहीं हुई, यशोदा जी कैसे तेरी मोटी चोटी होगी, ये तो माखन और रोटी गपा कप खा जाता है और तू खाता नहीं है कुछ, कह जा भी ले आओ, बस मांग करके रोटी और मक्खन, चोटी देखते हैं इधर खा रहे हैं इधर चोटी है मोटी हुई कि नहीं, ऐसे भोरे भारा और कुछ नहीं जानता है। और इसको तू आप लोग भगवान कहते हैं ये कभी संभव है, बस हंस करके उड़ा दिया, सभा भंग हो गई और फिर अपने अपने घर में चले। इस तरह से बैठक में बीच बीच में ये विचार होता है, विचार करते हैं भगवान किंतु फिर भी वो विचार से निकल जाता है, क्यों माधुर्य के द्वारा समस्त ऐश्वर्य ऐसे डूब जाता है जैसे कि पैसिफिक ओशन में हिमालय पहाड़ डूब जाए 2-4 माइल ऊपर ही पानी रह जाएगा, एकदम नीचे चले जाएंगे, मालूम नहीं ये कहाँ ये रखे गए। इस तरह से ऐश्वर्य माधुर्य में डूब जाता है, ये ब्रज की कथा है। अब आगे की कथा सुनिए। जय
श्री श्री वसुदेव नारायण वसुई महाराज की जय।
गयो छाए गयो छाए गयो री सम बन बन बसंती बन बन बसंती बन बन बसंती बन बन ओ छाए गयो छाए गयो छाए गयो री सम बन बन बसंती छाए गयो री सम बन बन मोर मुकुट शिर हार बसंती मोर मुकुट गल फूलन को हर बसंती गल फूलन को हर बसंती मंद मंद मोछाए गयो री सम बन बन बसंती मंद मंद मोछाए गयो री सम छाए गयो जग रही है सब सारी सखिया जग रही सब सारी सखिया मनमोहन से लागी अखिया मनमोहन से लागी अखिया जग रही सब सारी सखिया जग रही मनमोहन से लागी अखिया मनमोहन से अखियन शाम समय रहो रीशम बन बन बसंती अखियन शाम समय रहो रीशम छाए गयो छाए गयो छाए गयो रीशम बन बन बसंती सज रहे हैं सब कुंज बसंती
शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम गौरत्रिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेक्षकृत्यं द्वैपायनो विरहकार्तव्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां च भक्त्या विहीनाय परा क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणान् नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्दीर
आज सवेरे श्रीमद्भागवत का हृदय रासलीला आरंभ हुई। रासलीला श्रवण का अधिकार या कहने का अधिकार सबको नहीं है, विशेष विशेष श्रद्धालु व्यक्तियों को ही इसमें श्रवण का अधिकार है, अन्यथा शिवत को लाभ नहीं करने के पहले ही यदि बीज पान कर लिया तो मरेंगे। इसलिए भारतवर्ष में और बाहर में भी बहुत से लोग इन लीलाओं पर कटाक्ष करते हैं क्योंकि अधिकारी नहीं है। परीक्षित महाराज जी का 7 दिन में मृत्यु निश्चित था, एकदम मरणशैया पर हैं एक तरह से, और उसमें भी 5 दिवस चला गया है। 6th दिन में 6th दिन में उन्होंने इस कथा का कहना आरंभ किया। सुखदेव गोस्वामी के संबंध में मैंने पहले बतलाया कैसे वितरागी हैं, कपड़े की भी जरूरत नहीं, स्त्रियां स्नान कर रही हैं उनको काठ पत्थर समझ करके और उधर में दृष्टि नहीं दी, और व्यास जब आए तो स्त्रियां खड़ी होकर के कपड़े लत्ते पहन करके लज्जा से उनको झुक करके प्रणाम किया और पूछा व्यास जी ने, हमारा नौजवान लड़का 16 वर्ष की उम्र का ये गया नंग न होकर के तो तुम लोगों को लज्जा नहीं आई और मैं तुम्हारे पिता के समान वृद्ध हूँ और मुझसे तुमको लज्जा आई और कपड़े पहन करके मेरे पास में आई। तो बोली जी वो तो उस अवस्था में चले गए, उनको कोई दृष्टि ही धरने नहीं दी और आप हमसे पूछते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परम वितराग हैं, सब समय चित्त उनका भगवान के चरणों में लगा रहता है। वो नहीं देखते हैं कि ये स्त्री है, पुरुष है, व्यक्ति है, कौन है, उसको भगवत परिकर के रूप में ही वो देखते हैं। उनकी दृष्टि में कोई बद्ध है ही नहीं। ये बद्ध, ये जो दृष्टि है, ये तो जीवों की दृष्टि में जो बद्ध जीव है उनकी दृष्टि में बंध और मोचन है ही नहीं है। जो आत्मा नित्य चेतन है उसका बद्ध कैसे संभव है? ये केवल कहने के लिए कहा जाता है कि ये जीव बद्ध हो गया। मुक्त पुरुषों की दृष्टि में, नारद इत्यादि की दृष्टि में, या हमारे चैतन्य महाप्रभु स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देवर मूर्ति। अरे बालू के ढीप को बहुत बालू जमा हुए उसको वो गोवर्धन पर्वत देखते हैं, नदी मात्र जल मात्र को देखते ही उनको यमुना का भान होता है, और जहाँ जंगल देखते हैं वन देखते हैं उसको वृंदावन का भान होता है। तो वो ऐसे ही महापुरुषों की दृष्टि होती है। प्रहलाद महाराज के लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं है, उनसे भी उसी दशा में ये लोग हैं। इसलिए मरते समय में एक काम उद्दीपक इस लीला कथा को श्रवण कराएंगे यह कभी भी संभव नहीं है। दूसरी बात, नारद जी, उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इन गोपियों की चरण धूलि को बहुत दूर से प्रणाम करते हैं, चरणों को ध्यान नहीं कर सकते, इनका सामीप्य नहीं पा सकते। इसलिए उन्होंने कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम अफिक्ष्णशः। यही नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में गोपियाँ हैं और उस दिशा से हवा आ रही है, राधा कुंड के सुशीतल जलों से स्निग्ध हो गई है, उसमें रहने वाले कमलों से सुशोभित हो गई है, और वो राधा जी के अंगों में उनके केवल अंचल का स्पर्श किया और राधा जी के अंग नहीं उनके अंचल में राधा जी की जो सुंदर सुगंध सुवासित है उस सुगंध को लेकर के कृष्ण के पास में गई हवा। धन्याति धन्य ऐसी जो हवा है, कृष्ण उस हवा को पाकर के कृतार्थ हो गए, आज हमारा जीवन कृतार्थ। राधा जी का संग नहीं, राधा जी के अंग के गंधों का संग नहीं, उनके अंचल का गंध और उसको पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। इसलिए जिस दिशा में है वो, उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं वो प्रसन्न हो, इतनी बड़ी चीज है राधा जी की लाग्नि शक्ति और उसकी काय व्यूह और प्रकाश। ये गोपियां साधारण उनके साथ में ये रास कर रहे हैं। रासलीला क्या चीज है? रस से होता है रास। सवेरे श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने कुछ कुछ बतलाए, जहां पर युवतियां और युवक नायक नायिका बहुत से एक दो नहीं हाथों में हाथ मिलाकर परस आलिंगन और चुंबन करते हुए जब एकत्र नृत्य करते हैं ताल स्वर इत्यादि के साथ में, तब वो रास होता है। केवल वो भी प्राकृत नायिका के लिए कभी भी रस शब्द का उपयोग नहीं किया गया। द्वारका में यदि कृष्ण बहुत से नायिकाएं आ जाएं, उनकी स्त्रियां आ जाए और वहां पर वो रास करें तो रास होगा, वहां पर रास नहीं हो सकता। यशोदा मैया भी तो कृष्ण का आलिंगन करती हैं, गोदी में रख लेती हैं, उनका चुंबन करती हैं, शिश्लति चुंबती सभी तो करती हैं यशोदा मैया, तो रास हो जाएगा ने? वो कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया उनका मस्तक ग्रहण करके उनको चुंबन और गोदी में लेकर के प्यार करती हैं, तो यह रास हो जाए। इसलिए यह रास रास केवल अपनी कृष्ण की जो सर्व सच्चिदानंदमय है वह अनंत शक्तियों से अत्यंत शक्तिशाली हैं, रसमय विग्रह हैं, और उनकी रसमय विग्रह गोपियां हों उनमें रसमय। दूसरी बात, इसमें एक काम विजय की लीला है। काम ने सोचा, कामदेव ने, मैंने जगत को कपा दिया है, त्रस्त कर दिया है। ब्रह्मा जी च्युत हो पड़े, एक अपनी सृष्टि में अलौकिक रमणी का उन्होंने सृष्टि की उन्होंने, और उसके देख करके मुग्ध हो गए। मरीचि ऋषि के लड़कों ने और दूसरे लोगों ने हंसना आरम्भ किया, आज देखो तो ये बूढ़ा कैसा है, अपनी लड़की को ही सृष्टि करके पैदा करके और उसके ऊपर में कामातुर हो रहा है, भाव को समझ नहीं सके, इसलिए ब्रह्मा जी ने अभिसंपात कर दिया। कामदेव कह रहा है, शंकर जी को मैंने नचा दिया, नंगे घुमा दिया। चंद्रमा अपने गुरु जी की पत्नी के प्रति धावित है, इंद्र गौतम के प्रति धावित है, सबको नचा दिया। कृष्ण को भी जरा नचा दें। जमुना बह रही है खूब सुशीतल रूप में, कलकल शब्द हो रहे हैं, चंद्र पूरब दिशा में उदित हो रहा है, अत्यंत सुंदर रमणी अपनी आभा से उन्होंने पूर्व दिशा अपनी प्रेयसी को रंग दिया, लाल हो गई कुमकुम रंग से, और उसको देख करके इन कृष्ण को उद्दीपना हो। उस समय निर्जन वन कोई भी पुरुष नहीं, लक्ष्मी को भी अपनी कांति से पराभूत करने वाली सत्यभामा रुक्मिणी को भी, और ऐसा ऐसी एक दो नहीं कोटि कोटि गोपियां वहां पर उपस्थित थी। ओ, आप लोगों का स्वागत है, भली आई, मैं आपके लिए करवाम किम, मैं क्या आपका उपकार करूं, अच्छा अपन की शोभा देख लिया, मुझे भी दर्शन कर लिया, क्योंकि मैं परमात्मा हूं ना, दर्शन कर लिया, अब तो संतुष्ट हो गई, अब तो घर में आप पधारी। आप पतिव्रता हैं, अपने पतियों की सेवा करना ही स्त्री का धर्म। लंगड़ा लूला कुबड़ा कुष्ठ रोग युक्त यदि कमाऊ भी पति न हो तो स्त्री के लिए वो छोड़ने योग्य नहीं, उसकी सेवा करनी चाहिए। रात भी घोर है, कृष्ण गोपियों ने सोचा जैसे कैसा ये झूठा है, रात कैसी थी, बादल थे उसमें, चंद्रमा तो उदित हो रहा है, तो ये घोर निशा कहां हुई, ये झूठ कर रहा है, और इसमें तो मोर हिरण इत्यादि हैं, और बहुत सुगंध युक्त पुष्प खिले हुए हैं, ये मुझे हम लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण को लौटा रहे हैं, कोई साधारण पुरुष कर सकता है, ब्रह्मा जी कर लेंगे, न चंद्र कर लेंगे, न इंद्र करेंगे, न कौन करेगा, इसी के लिए संभव है। तो उस समय में यदि काम की बात होती तो औरब्ध सौरत इत्यादि मनमथ मनमथ जोग माया उपाश्रित, ये शब्दों की वहां पर अवतारणा नहीं की जाती, इसलिए यह काम विजय पर इतनी गोपियां नित्य कर रही हैं, हाथों में हाथ लेकर के कृष्ण नित्य कर रहे हैं, कभी उनके अंगों को स्पर्श करते हैं, कभी क्या कैसे नित्य करते हैं, कभी कृष्ण गान करते हैं और वह इत्यादि स्वरों के साथ में, विशाखा जी उनसे और पंचम सुर में करती हैं, ललिता जी और सप्तम सुर में करती हैं, और उसी को श्रीमती राधिका जी और उन्नत ले कर करके कृष्ण को भी छका देती हैं, और कृष्ण कहते हैं साधु साधु साधु। और उस समय में देखो इन शब्दों के द्वारा इन सब के लिए परीक्षित महाराज भी मरने जा रहे हैं, और उनको ऐसी कामोद्दीपक लीला सुनाएंगे, नहीं, समस्त लीलाओं का श्रीमद्भागवत का यह सार लीला है। इस तरह से इसको समझना चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ में। यहाँ तक कहा, विक्रीडितम ब्रजवदी दंच विष्णु श्रद्धान्वित सुनियात वर्णयीद जा भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद रोग मासु अपिनोत्त चिर। ये कैसी लीला अद्भुत है, जिसको श्रद्धा पूर्वक यदि कोई श्रवण करे, अनुसुणियात गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके पुनः पुनः श्रवण करते हुए जब उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, वो वर्णन करेगा, ऐसे वर्णन को सुन करके पहले क्या होगा, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। अब प्रेम की झलमल किरणें जबकि हृदय में उदित होंगी, अपने आप उसे प्रकाशित हुआ हृदय रोग की, हृदय रोग काम रोग जो कुछ है सब समाप्त हो जाए। तो जिस रासलीला के श्रवण करने से श्रद्धा पूर्वक काम रोग दूर हो जाता है और उसे काम की वृद्धि होगी। हाँ एक बात है, चंद्र आकाश में उदित है और पात्र में चंद्र की वो प्रतिच्छवि नहीं आ रही है, तो क्या समझना चाहिए, चंद्र उदित है और पात्र में पानी भी है या जलाशय है, किंतु प्रतिच्छवि उसकी नहीं आ रही है, समझो जो मेघ हो रहा है, ये चंद्र का दोष नहीं पात्र का दोष नहीं, ऐसे समझो। यदि इन लीलाओं को सुनने से दुर्भागा लोगों के हृदय में यदि काम की उद्दीपना होती है तो समझो जो ये काम रूपी मेघ बीच में है,